तो चलिए आज गोता लगाते हैं पक्षियों की रंगीन और दिलचस्प दुनिया में। हमारे पास ये अध्याय है और हमारा काम है इसमें से सबसे जरूरी और मजेदार बातें निकालना। तैयार हैं?
बिल्कुल। पक्षी वाकई कमाल के जीव हैं और इनकी कुछ खासियतें हैं, जैसे इनके फेदर्स, इनकी बीक और इनके फीट एंड क्लोज, ये सब इन्हें दूसरे जानवरों से एकदम अलग बनाती हैं।
हाँ बिल्कुल।
ये सिर्फ देखने में अनोखी नहीं है बल्कि इनके जीने के तरीके के लिए, मतलब सर्वाइवल के लिए, बहुत जरूरी हैं।
और शुरू करने के लिए एक मजेदार बात, आपने कौओं के बारे में सुना है?
हाँ, कौए।
श्रोत बताते हैं कि ये सबसे होशियार पक्षियों में से हैं। मतलब चेहरे पहचान लेना, पहेलियां सुलझाना, यहाँ तक कि खाना ढूंढने के लिए औजार इस्तेमाल करना।
कमाल है। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी अच्छी होती हैं।
है ना? और ये बुद्धिमत्ता भी शायद उनके अनुकूलन का ही हिस्सा है, जैसे उनकी शारीरिक बनावट उनके माहौल के लिए अनुकूलित है।
बिल्कुल, सब कुछ जुड़ा हुआ है।
सही कहा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। भारत के कुछ आम पक्षी कौन से हैं, उनका शरीर कैसे बना है जो उन्हें उड़ने में मदद करता है, है ना? उनकी खाने की आदतें उनकी बीक से कैसे जुड़ी हैं।
हाँ, और वो घोंसले कैसे बनाते हैं बच्चों की देखभाल।
और हाँ, ये भी कि हमें उनकी देखभाल क्यों करनी चाहिए, मतलब इस अध्याय का पूरा निचोड़ निकालेंगे आज।
बढ़िया, शुरू करते हैं।
तो पक्षी तो लगभग हर जगह दिख जाते हैं, है ना? पेड़ों पर, पानी के पास, शहरों में, गांवों में।
सही बात है।
और भारत में तो इनकी अनगिनत किस्में हैं, हर किसी का अपना एक ठिकाना, अपना हैबिटेट।
जी हाँ, विविधता बहुत है। जैसे आमतौर पर दिखने वाली कॉमन मैना, या फिर घर के आसपास फुदकती स्पैरो जिसे गौरैया कहते हैं।
हाँ, गौरैया तो दिखती ही है।
शहरों में दिखने वाले रॉक पिजन मतलब कबूतर, मीठी आवाज वाली एशियन कोयल, वो कोयल,
कोयल की आवाज तो सब पहचानते हैं।
और पानी के पास स्पॉट बिल्ड डक, बत्तख, ये कुछ उदाहरण है, पर ये दिखाते हैं कि पक्षी हमारे चारों ओर हैं।
बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं इनके शरीर पर। श्रोत कहता है शरीर तीन हिस्सों में बटा है, सिर, धड़ और पूंछ। इनके पास सिर है, आंखें हैं, पंख हैं, पैर और पंजे हैं और पूंछ भी। पर जो सबसे खास बात है वो है इनकी बीक और इनके फेदर्स। दांत तो होते नहीं इनके।
हाँ, सारी मेहनत बीक की।
सही। और सांस लेने के लिए चोंच के ऊपर दो छेद होते हैं जिन्हें नेयर्स कहते हैं।
जी, और ये पूरा ढांचा, मतलब पूरी बॉडी स्ट्रक्चर, उड़ने के लिए बेहतरीन तरीके से डिजाइन की गई है। सोचिए, इनकी हड्डियां अंदर से खोखली और हल्की होती हैं।
खोखली हड्डियां? अच्छा, इससे वो कमजोर नहीं हो जाती? मतलब उड़ने के लिए तो मजबूती चाहिए होगी।
हाँ, ये सवाल अच्छा है। खोखली होने के बावजूद उनकी हड्डियों का ढांचा अंदर से मजबूत होता है, जैसे पुलों में ट्रस का डिजाइन होता है ना।
अच्छा, ओके।
तो वजन कम पर मजबूती बरकरार। साथ ही इनका शरीर स्ट्रीमलाइंड होता है, नाव जैसा, आगे से पतला, बीच से थोड़ा चौड़ा, फिर पतला,
ताकि हवा में आसानी से निकल सके।
हाँ बिल्कुल, ये हवा को आसानी से चीरने में मदद करता है। और फिर हैं इनकी फ्लाइट मसल्स, यानी उड़ने वाली मांसपेशियां, जो बहुत ताकतवर होती हैं और पंखों को ऊपर नीचे करने का काम करती हैं। इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करने वालों को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं।
ऑर्निथोलॉजिस्ट, सही। और फेदर्स, ये तो पक्षियों की पहचान है, ये सिर्फ उड़ने के लिए नहीं होते हैं ना?
बिल्कुल नहीं, फेदर्स के कई काम हैं। एक तो ये उनकी नाजुक त्वचा को बचाते हैं।
हाँ?
फिर सोचिए, मोर के शानदार पंख वो साथी को आकर्षित करने के काम आते हैं।
बिल्कुल।
ये शरीर की गर्मी को रोक कर रखते हैं, जैसे हमारा स्वेटर काम करता है, इंसुलेशन।
अच्छा, गर्म रखते हैं मतलब।
हाँ, और ये कैमोफ्लाज, यानी छिपने में भी मदद करते हैं, ताकि शिकारी उन्हें आसानी से देख ना सकें।
कमाल है।
ये फेदर एक खोखली नली, जिसे शाफ्ट या रैचेस कहते हैं, से जुड़ा होता है, और ये केराटिन नाम के पदार्थ से बनता है, वही जिससे हमारे नाखून बनते हैं।
अच्छा, वही केराटिन। और क्या सभी फेदर्स एक जैसे होते या अलग अलग तरह के?
नहीं, उनमें भी विविधता है। मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं।
कौन कौन से?
एक तो हैं फ्लाइट फेदर्स, ये लंबे मजबूत होते हैं, पंखों और पूंछ पर पाए जाते हैं, यही उड़ने में असली मदद करते हैं। दूसरे हैं बॉडी फेदर्स, ये छोटे और रंगीन होते हैं, शरीर को ढकते हैं और उसे एक आकार देते हैं।
ओके।
और तीसरे हैं डाउन फेदर्स, ये एकदम नरम रुएंदार होते हैं, शरीर के पास छुपे रहते हैं और छोटे बच्चों को या ठंडे मौसम में पक्षी को गर्म रखते हैं, ये उनकी अपनी रजाई जैसे हैं।
वाह, डाउन फेदर्स, ये तो बहुत सोचा समझा डिजाइन लगता है। अच्छा, यहाँ स्रोत में शुतुरमुर्ग और नीले पक्षी के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें थी।
हाँ, शुतुरमुर्ग मतलब ऑस्ट्रिच, वो उड़ नहीं सकता पर जमीन पर बहुत तेज दौड़ता है, करीब 43 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, और 9 फीट तक ऊंचा हो सकता है।
बाप रे, 9 फीट!
हाँ, जमीन का बादशाह है वो। और मजेदार बात ये कि नीले पक्षी ब्लू बर्ड्स जो होते हैं वो नीला रंग देख ही नहीं सकते।
क्या, सच में?
हाँ, उनका नीला रंग हमें दिखता है, हमारी आंखों को, उन्हें नहीं।
है ना कमाल। चलिए अब बीक पर आते हैं। दांत नहीं है तो बीक ही सब कुछ है। खाना पकड़ने से लेकर बच्चों को खिलाना, घोंसला बनाना, सब कुछ।
बिल्कुल, और जैसा खाना वैसी बीक, ये प्रकृति के सबसे अच्छे उदाहरणों में से है कि कैसे जरूरत के हिसाब से शरीर ढल जाता है।
कुछ उदाहरण देखते हैं।
हाँ बताइए।
जैसे गौरैया या कबूतर की कोन शेप्ड बीक होती है, छोटी मजबूत शंकु जैसी। ये बीज और दाने तोड़ने के लिए परफेक्ट है।
हाँ देखिए, मजबूत लगती है।
फिर तोते की कर्व्ड बीक देखी है, वो हुक जैसी होती है।
हाँ, वो तो बहुत खास होती है।
वो उसे मजबूत मेवे और फल जैसे अखरोट वगैरह तोड़ने और पेड़ों पर चढ़ने में भी मदद करती है।
अच्छा, चढ़ने में भी?
हाँ, और वो नन्हे हमिंग बर्ड या सन बर्ड, उनकी ट्यूब्यूलर शेप्ड बीक होती है, पतली लंबी जैसे स्ट्रॉ, फूलों का रस पीने के लिए।
बिल्कुल, ये फूलों के अंदर जाके उनका मीठा रस, नेक्टर पीने के लिए बनी है।
और कठफोड़ा, उसकी चोंच तो बहुत मजबूत लगती है।
हाँ, वुड पैकर की चिजल ड्रिलिंग बीक होती है, छेनी जैसी मजबूत। इससे वो लकड़ी में ठक ठक करके छेद करता है और अंदर छिपे कीड़े निकाल लेता है। शिकारी पक्षी जैसे बाज या उल्लू, उनकी शार्प हुक्ड बीक होती है, तेज, नुकीली और आगे से मुड़ी हुई। ये मांस को फाड़ने के काम आती है।
डरावनी लगती है थोड़ी।
हाँ, काम के हिसाब से। फिर बत्तख की फ्लैट एंड ब्रॉड बीक है, जिसके किनारों पर कंघी जैसी संरचना होती है।
अच्छा, कंघी जैसी?
हाँ, वो पानी में से कीचड़ छानकर छोटे कीड़े और पौधे पकड़ने में मदद करती है, एक तरह की छन्नी का काम करती है।
कमाल है, यानी हर बीक एक खास काम के लिए बना औजार है। अच्छा, अब पैरों और पंजों, फीट एंड क्लॉज पर आते हैं। इनके भी कई काम है, चलना, फुदकना, बैठना, शिकार पकड़ना।
हाँ, और यहाँ भी वही कहानी है, जैसा काम वैसे पैर। हर पक्षी के दो पैर होते हैं, आमतौर पर चारों उंगलियों वाले। जो पक्षी पेड़ों पर रहते हैं जैसे कौवा या गौरैया, जिन्हें पोचिंग बर्ड्स कहते हैं, उनकी 3 उंगलियां आगे और 1 पीछे होती है।
अच्छा,
ये बनावट उन्हें टहनियों पर कसकर पकड़ बनाने में मदद करती है, सोते हुए भी वे गिरते नहीं।
अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है,
है ना। फिर तोते और कठफोड़वा जैसे चढ़ने वाले पक्षियों, क्लाइंबिंग बर्ड्स की 2 उंगलियां आगे और 2 पीछे होती हैं। ये उन्हें पेड़ के तने पर मजबूती से पकड़ बनाकर ऊपर नीचे चढ़ने में मदद करता है,
इसीलिए वो आसानी से चढ़ जाते हैं।
बिल्कुल, शिकारी पक्षियों फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जैसे बाज या चील के पंजे बहुत मजबूत और नुकीले होते हैं, जिन्हें टैलेंस कहते हैं।
टैलेंस?
हाँ, सुना है। ये शिकार को दबोचने और मारने के लिए बने हैं। मुर्गी जैसे जमीन पर खाना खोजने वाले पक्षियों के पैर मजबूत और पंजे कठोर होते हैं, जिनसे वो जमीन खुरचकर कीड़े और बीज ढूंढते हैं।
हाँ, मुर्गियों को देखा है ऐसे करते हुए।
पानी के किनारे चलने वाले जैसे सारस या बगुले, उनकी टांगे लंबी और उंगलियां फैली हुई होती हैं, ताकि वो कीचड़ में धसे बिना चल सकें।
लंबी टांगे, सही।
और बत्तख या हंस जैसे तैरने वाले पक्षियों की उंगलियों के बीच त्वचा की झिल्ली होती है, वेबिंग जिसे कहते हैं।
हाँ, जाल जैसा पैर।
बिल्कुल, ये पानी में पैडल का काम करता है।
सच में हर जरूरत का समाधान है इनके पास।
अच्छा, स्रोत में हमिंग बर्ड और कॉन्डोर के बारे में भी कुछ था।
हाँ, हमिंग बर्ड पीछे की तरफ उड़ सकता है, जो बहुत कम पक्षी कर पाते हैं, पर ये चल नहीं सकता।
चल नहीं सकता?
नहीं, इसके पैर इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ बैठने के काम आते हैं। उड़ने में ये माहिर है, चलने में नहीं।
अजीब बात है।
और कॉन्डोर जो बहुत बड़ा शिकारी पक्षी है, उसके अंडे का छिलका इतना मजबूत होता है कि बच्चे को उसे तोड़कर बाहर निकलने में हफ्ता भर लग सकता है।
1 हफ्ता? बाप रे।
हाँ, मजबूत छिलका,
अविश्वसनीय। अच्छा, अब आते हैं इनके घरों पर, घोंसलों पर। हाँ। ये अपना घर खुद बनाते हैं, जो जानवरों में ज्यादा आम नहीं है।
हाँ, और ये घोंसले मुख्य रूप से अंडे देने और बच्चों को पालने के लिए एक सुरक्षित जगह देते हैं, और इनमें भी गजब की कारीगरी दिखती है।
हाँ, कुछ घोंसले तो बहुत सुंदर होते हैं।
बिल्कुल, जैसे गौरैया या कबूतर का घोंसला साधारण होता है, घास फूस पत्तियों से बना कटोरा जैसा किसी सुरक्षित कोने में। वहीं बया को देखिए, नर बया घास के तिनकों को बुनकर एक लटकता हुआ बोतल जैसा खूबसूरत और मजबूत घोंसला बनाता है।
हाँ, बया का घोंसला तो देखा है, कमाल की बुनाई होती है,
है ना, जिसका रास्ता नीचे से होता है। और दर्जी चिड़िया तो सचमुच सिलती है।
सिलती है,
कैसे?
रेशों या मकड़ी के जाले से सिलकर एक थैली जैसा घोंसला बनाती है, अंदर रुई या नर्म घास भर देती है ताकि आरामदायक रहे।
वाह, ये तो सच में दर्जी है।
और कठफोड़वा वुडपेकर पेड़ के तने में छेद करके अपना घर बनाता है और अंदर लकड़ी के बुरादे से आरामदायक बिस्तर जैसा बना लेता है। पर कुछ पक्षी थोड़ी मेहनत बचा लेते हैं ना।
हाँ, कोयल जैसे आलसी पक्षी।
हाँ, कुछ ऐसे भी हैं। कोयल, कुकू और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वे चालाकी से दूसरे पक्षियों खासकर कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे आती हैं।
और कौवा पालता है उन्हें।
हाँ, बेचारा कौवा उन्हें अपना समझकर पालता रहता है। पेंगुइन भी पारंपरिक घोंसला नहीं बनाते, वे जमीन पर पत्थर इकट्ठे करते हैं और नर पेंगुइन अंडे को अपने पैरों पर रखकर पेट की त्वचा से ढककर गर्म रखता है।
अच्छा, ये भी एक तरीका है। तो जब अंडे फूटते हैं, जिसे हैचिंग कहते हैं, उसके बाद बच्चों का क्या होता है?
तब शुरू होती है असली देखभाल। बच्चे जब निकलते हैं तो बहुत नाजुक होते हैं, अक्सर बिना पंखों के, आंखें बंद, पूरी तरह माता पिता पर निर्भर। माँ बाप उन्हें लगातार खाना खिलाते हैं, दुश्मनों से बचाते हैं और मौसम की मार से भी।
बहुत मेहनत का काम है।
बहुत ज्यादा। बच्चे तेजी से बड़े होते हैं, उनके फेदर्स आते हैं और फिर माँ बाप उन्हें उड़ना और खुद खाना ढूंढना सिखाते हैं।
पूरी परवरिश।
ये पूरी प्रक्रिया ही अद्भुत है। अच्छा, अध्याय के अंत में हमें भी कुछ करने को कहा गया है पक्षियों की देखभाल के बारे में।
हाँ, ये जरूरी है, खासकर शहरों में और गर्मी के मौसम में जब पानी और खाने की कमी हो सकती है।
हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं।
जैसे?
जैसे बाहर किसी बर्तन में पानी भर कर रखना, जिसे बर्ड बाथ कहते हैं। पक्षी आकर पी भी सकते हैं और गर्मी में नहा भी सकते हैं।
हाँ, ये तो आसान है।
और दाना डालने के लिए बर्ड फीडर्स लगा सकते हैं, जिसमें अनाज या बीज डाल दें। इससे भूखे पक्षियों को भोजन खोजने में मदद मिलती है।
सही बात। और अगर किसी ने घर में पक्षी पाला हो
तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्हें सही खाना समय पर देना, उनके पिंजरे या रहने की जगह को साफ रखना, और अगर वे बीमार लगे
हाँ।
तो तुरंत पशु चिकित्सक मतलब वेटरिनरी डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। पालतू पक्षी पूरी तरह हम पर निर्भर होते हैं।
बिल्कुल सही। तो इस पूरे अध्याय को देखें तो सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो यही कि पक्षी अनुकूलन यानी अडैप्टेशन के चैंपियन है। मतलब उड़ने से लेकर खाने और घर बनाने तक हर चीज उनके माहौल और जरूरत के हिसाब से एकदम सटीक बनी है।
बिल्कुल सही कहा, यही मुख्य बात है। उनकी शारीरिक बनावट जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी, हॉलो बोन्स, उनके मल्टीफंक्शनल फेदर्स, उनकी जरूरत के हिसाब से बनी अलग अलग बीक्स और उनके पैरों और पंजों की बनावट, ये सब मिलकर उन्हें इतना सफल बनाते हैं। ये जानकारी हमें अपने आसपास दिखने वाले इन पक्षियों को सिर्फ देखने की बजाय समझने और उनकी सराहना करने का मौका देती है।
अब जब भी कोई चिड़िया दिखेगी तो ये सब बातें याद आएंगी।
बिल्कुल।
और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इसी अध्याय से जुड़ा है। जरा सोचिए, अगर कठफोड़वे की उंगलियां सारी एक ही तरफ होती जैसे हमारी होती हैं, तो क्या वो पेड़ पर वैसे चढ़ पाता जैसे वो चढ़ता है?
अच्छा सवाल है।
वो जो दो उंगलियां आगे दो पीछे वाली बात थी, उसका क्या महत्व है उसकी चढ़ने की कला में? सोचिएगा इस पर।
हाँ, सोचने वाली बात है।
अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नया जानने के लिए।